ओम शांति। आज 7 जनवरी 2019 अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में 7वां अभिलेख मन वचन कर्म से दुख न दो। मन वचन कर्म से दुख ना दो। मन से कैसे किसी को दुख दिया जाता है? मन से दुख देना,
मन से दुर्भावनाएं,
दुर्भावनाएं, मन से बद्दुआएं, मन से नफरत घृणा, मन से व्यर्थ, मन से निगेटिविटी, मन से अकल्याण की भावना, मन से वाचा से तो दुख दिया जाता है, कर्म से भी दुख दिया जाता है, मन से षड्यंत्र योजनाएं रचना और मन से शाप देना किसी को मन से शापित कर देना कि इसका बुरा हो जाए। और यदि एक ब्राह्मण आत्मा दूसरे ब्राह्मण आत्मा को शाप दे दे, एक है संसार की कोई आत्मा संसार की कोई आत्मा को शाप दे, एक है ब्राह्मण आत्मा दूसरी ब्राह्मण आत्मा को शाप दे, या फिर संसार की किसी आत्मा को शाप दे, खतरनाक कौन सा है? एक है संसार की आत्मा को शाप दे, या संसार की आत्मा ब्राह्मण आत्मा को शाप दे। एक है ब्राह्मण आत्मा को शाप दे और ब्राह्मण आत्मा संसार की आत्मा को शाप दे। क्या कहेंगे इसके विषय में? एक संसार की आत्मा यदि संसार की आत्मा को शाप दे तो असर तो होगा थोड़ा बहुत, उसके तल पर जितनी उसकी पावर है। दूसरा है संसार की आत्मा एक ब्राह्मण आत्मा को शाप दे, शायद इतना असर नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के पास पावर बहुत है, तो उसके शाप का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ दिनों पहले मुरली में था घर वाले क्या बन जाते हैं? दुश्मन, घर के बाती और दुनिया दुश्मन बन जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा है ब्राह्मण आत्मा यदि एक संसार की आत्मा को शाप देते तो बड़ा गहरा असर होगा उसका, शापित कर दे किसी को, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्माएं हैं। महाभारत का एक दृश्य है द्रौपदी वस्त्रहरण, जैसे ही वो सीन पूरा हो गया और द्रौपदी क्रोध में आ जाती है और वो कहती है मैं पूरे कुरुवंश को शाप देती हूं, तब तक इमीडिएट वहीं पर गांधारी आ जाती है, कहती है शाप नहीं देना, कैसे भी है अपने हैं। और तब वो द्रौपदी वो गांधारी कहती है कि हे महाराज धृतराष्ट्र को अगर द्रौपदी शाप दे दे तो उसका असर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। सूरज अपनी किरणें देने बंद कर देगा, चंद्रमा अपनी चांदनी देना बंद कर देगा, इतनी शक्ति उसके शाप में है। तो एक ब्राह्मण आत्मा बड़ी ऊंची आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, अगर उसके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए किसी के लिए कि तेरा अकल्याण हो जाए सत्यानाश हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? सत्य भी हो सकता है। एक ब्राह्मण आत्मा दूसरे ब्राह्मण आत्मा को शाप दे, अब ये इस पर निर्भर करता है कि दोनों की अपनी अपनी शक्तियां कितनी है, परंतु असर तो फिर भी करेगा क्योंकि शाप बद्दुआ का काम करता है, शाप बद्दुआ जैसा है।
अगर किसको दे रहा
तो कुछ नहीं असर होगा। इसलिए दोनों की शक्ति कितनी है। यदि कोई शाप दे भी दे, परंतु यदि हमारी शक्ति उससे अधिक है तो फिर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तो यहां बाबा कह रहे हैं दुख न दो। वाचा से दुख कैसे देंगे या देते हैं? अपशब्द, कटाक्ष, गाली और दिल को दुखाने वाले, चोट पहुंचाने वाले, आहत करने वाले और नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट, अपमान करना, अवमानना करना किसी की, और किसी की गलती को अपने जेब खर्च करके, मिर्च लगाकर, मसाला डालकर, खास समय देकर उसको परोसना दूसरों के सामने, या फिर दूसरों की छोटी बात को बड़ा कर पेश करना, या फिर किसी के पीठ पीछे उसकी निंदा ग्लानी करना, या किसी को धोखा देना, या फिर मीठे शब्द से किसी को धोखा देना। तो वचन से भी दुख ना दे, कटुवाणी। जैसे दो व्यक्ति है, दोनों ही शहद बेचते हैं। पहला व्यक्ति है, उसका शहद जो है, उसका मधु बहुत मीठा है और एकदम हाई क्वालिटी का है, पर उसका सेल कुछ भी नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति है, वो भी शहद बेचता है, पर वो निकृष्ट दर्जे का है और ज्यादा मीठा भी नहीं है, पर उसका बहुत बिकता है, सेल बहुत है। कारण बताओ। पहला जो है, जिसका शहद बहुत मीठा है परंतु उसकी वाणी बहुत कड़वी है, इसके लिए उसका नहीं बिकता। इसके लिए सेल्स का जो प्रिंसिपल है, अगर बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस सारा जबान की मिठास पर निर्भर है। कैसे कोई करता है, चाहे शहद कितना भी मीठा हो परंतु जबान अगर कड़वी हो तो चिमन भाई जी बिकेगा क्या? ये भी प्रिंसिपल है बिजनेस मैनेजमेंट का। जबान मीठी है तो गंजे को भी कंघी बेची जा सकती है। तो बोल, वचन, वाणी, भाषा, भाषण। तीसरा है कर्म से दुख। वो कैसा? कर्म से दुख देना, किसी का नुकसान कर देना, किसी को धोखा दे देना, और कर्म से दुख, हाँ कर्म से दुख करता, स्थूल हिंसा भी उसमें आ जाएगा। स्थूल हिंसा, हाँ चोरी करना, अच्छा वो भी हो जाएगा, उसको दुख तो होगा ना उसके, और नुकसान कर देना किसी का, और किसी की चीज खा लेना। और कर्म से दुख कैसे देते हैं? सबसे बड़ा दुख देना है काम कटारी। सबसे बड़ा दुख है क्रोध, बदला, रिवेंज। इसने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, बदला। क्षमा वो स्थान है जहां पर सारे बदले समाप्त हो जाते हैं। क्षमा वो द्वार है जहां पर आकर सारे बदले, दुर्भाव रुक जाते हैं। इसीलिए बदले का भाव बेचैन रखता है व्यक्ति को, स्थिर नहीं रहने देता है। और जब तक क्षमा के द्वार पर व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक वो अंदर ही अंदर जलता रहता है, आग की तरह आग जलाती है उसको बदले की। तो शांति स्तंभ का सातवीं तारीख का सातवां अभिलेख है, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख ना दो। दुख दोगे तो खुद ही दुखी होंगे, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस आएगा। ऋषि मुनि जो भी प्रार्थना करते थे, विश्व के लिए प्रार्थना करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाए, ये प्रार्थना प्रकृति में जा रही है और लौट कर उन्हीं के पास आ रही है। वास्तव में वो प्रार्थना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही कर रहे हैं। तो ये फिर उसके बाद में जो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ है 7 तारीख का आज का, वो है ब्रह्मा बाप के समान आपके यह नयन क्या अनुभव कराए आत्माओं को? हमारे नयन रूहानियत का अनुभव कराए, चलन क्या अनुभव कराए आत्माओं को? बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए, मस्तक क्या अनुभव कराए? मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए, और अव्यक्ति सूरत क्या अनुभव कराए? दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए, इसलिए अपनी अंतर्मुखी अलौकिक व रूहानी स्थिति में सदाकाल रहने का अभ्यास करो। सदाकाल रहने का अभ्यास, लंबा समय रहने का अभ्यास। तो नयन क्या हो जाए, क्या करें? रूहानियत का अनुभव कब कराएंगे नयन? जब हमारे नयन शुद्ध हो जाएंगे, जब नयन, नयनों का प्रेम देह से हटकर आत्मा से हो जाएगा। जो नयन देह को देखने में बड़ा खुशी अनुभव करते हैं, वही नयन देह से हटकर आत्मा के सौंदर्य को देखने लगे, तब उनमें रूहानियत आएगी आंखों में। तो जब आत्मा में रूहानियत, तो नयन भी रूहानी होंगे। तो नयन से क्या अनुभव आत्माओं को? रूहानियत का। चलन से क्या हो? चरित्र का साक्षात्कार। हमें बाप का परिचय देने की आवश्यकता नहीं, चलन ही ऐसी हो कि जिससे सामने वाला सामने से पूछे कि ये चरित्र कहां से तुमने निर्माण किए। इस कलयुगी संसार में, इस विकारी संसार में कोई ऐसी पवित्र आत्माएं भी रहती है? असंभव लोगों के लिए। तो चलन से चरित्र का साक्षात्कार, मस्तक से मस्तक मणि। आत्माएं हमें मस्तक मणि किस अनुपात में देख पाएगी, किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में हम आत्माभिमानी हैं। यदि हम आत्माभिमानी कम, तो उनको भी आत्मा कम दिखेगी। चौथा, सूरत से क्या हो? दिव्य अलौकिक स्थिति। सूरत से क्या हो? अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे। और इन चारों बातों के लिए बाबा कह रहे हैं क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी। जितने अव्यक्त इशारे हर इसमें, कहीं ना कहीं अव्यक्त अंतर्मुखता आ रही है। अलौकिक व रूहानी स्थिति में सदाकाल रहने का अभ्यास करो। क्या करो? अंतर्मुखी रहने का अभ्यास। अंतर्मुखी अर्थात क्या नहीं? बाहर मुखी नहीं। अंतर्मुखी अर्थात क्या नहीं? देह अभिमान से गैर हाजिर। अंतर्मुखी अर्थात क्या नहीं? दुखी नहीं, उदास नहीं, अशांत नहीं। अंतर्मुखी अर्थात क्या नहीं? शाय, शर्म वाला नहीं। जैसे कई लोगों को शर्म आती है ना, इसके लिए शर्मीले होते बड़े, सोशल पब्लिक, सोशलाइजिंग, इस सब से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी लज्जा रहती है। तो लज्जा अंतर्मुखता है क्या? शायनेस अंतर्मुखता नहीं है। फिर दूसरी एक अंतर्मुखता होती है एंटी सोशल, हेट्रेट है भीड़ से, पब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके लिए अकेले रहते हैं। वो क्या अंतर्मुखता है क्या? वो भी अंतर्मुखता नहीं है। एंटी सोशल रहना अंतर्मुखता नहीं है, शाय रहना अंतर्मुखता नहीं है, उदासी अंतर्मुखता नहीं है। अंतर्मुखता आनंद की अवस्था है। अध्यात्म में दो शब्द है, एक है अकेलापन, एक है एकांत। क्या अंतर है संजय भाई, दोनों में क्या अंतर है? एक है अकेलापन लोनलीनेस, एक है एकांत सॉलिट्यूड। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एकांत आनंद की अवस्था है और अकेलापन मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला, मैं अकेली, मैं दुखी हूं, बहुत उदास हूं, अंदर ही अंदर आंसू बह रहे, परंतु एकांत आनंद की अवस्था है, एक के अंत में खो जाने की अवस्था है। स्थूल की भी बात कर रहे हैं हम, वो तो ऊंची परिभाषा है एक के अंत में खो जाना, परंतु स्थूल भी। तो बाबा कह रहे हैं कि इन दोनों के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखी अलौकिक व रूहानी स्थिति में सदाकाल रहने का अभ्यास करो, और सदाकाल रहने का अभ्यास अर्थात लंबा समय देना पड़ेगा, टाइम चाहिए पुरुषार्थ के लिए। अच्छा, जितना टाइम अभी आत्माएं दे पा रही है शायद उतना पर्याप्त नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, संसार को भी देखना है, इधर भी देखना है, उसको भी देखना है, और फिर संपूर्ण भी बनना है, संपन्न भी बनना है। तो होगा क्या? नहीं होगा। एक व्यक्ति होता है बहुत ही उदास हो जाता है जीवन से, इतना उदास हो जाता है कि सोचता है बस खुदकुशी, जीवन का अंत कर लूं, और अंत करने निकल पड़ता है। जैसे कूदने ही वाला होता है तो साधु उसको पकड़ लेता है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है उदास, पैसे नहीं, गरीबी है, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई घड़ा दूंगा कि जिससे तुम जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, पर एक शर्त है, वो घड़ा अगर फूट गया तो जो कुछ मिला वो सब छुमंतर हो जाएगा। अब उसमें दो विकल्प है, अगर तुम मेरे साथ दो साल रहे तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे दूंगा, पर दो साल तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा, घड़ा तुमको मिल जाएगा। दूसरा है, अगर तुम मेरे पास पांच साल रहते हो तो मैं तुम्हें घड़ा बनाने की विधि सिखा दूंगा। अब बोलो क्या चाहिए? हाँ, पर वो कहता है मेरे टाइम का है मेरे पास, पांच साल आपके पास कौन रुकेगा, ना आपका भरोसा ना मेरा। वो कहता है मुझे तो दो साल वाला ऑप्शन जरा ठीक लगता है, ये ऑफर जरा ठीक है, और मैं बहुत ध्यान रखूंगा। तो वो दो साल रहता है, घड़ा उसको मिल जाता है, घड़े से जो जो चीजें मांगते सारी चीजें खड़ी हो जाती है, महल माड़िया सब कुछ, उसका अपना धाक, उसकी अपनी प्रतिष्ठा। और फिर धीरे धीरे व्यसनी हो जाता है, और व्यसनों के नशे में एक बार घड़ा सिर पे लेके नाचने लगता है, और घड़ा गिरता है और फूटता है, और जैसे घड़ा फूटता है सब कुछ गायब। सोचता है कि रुक गया होता तो अच्छा होता। स्वप्न ही है संसार। तो टाइम, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला, फटाफट मुझे चाहिए कुछ नहीं होने वाला। कोई भी स्थिति फटाफट नहीं होती। किसी ने एक बहुत लंबा मैसेज भेजा, मुझे एक ऐसा कुछ बता दो कि बस मैं एकदम संपूर्ण बन जाऊं, बस ऐसा कुछ बता दो कि मेरी जो स्थिति है ना ऐसी अच्छा लडोल बन जाए, मुझे जल्दी बताओ क्या क्या करूं, ऐसा कोई एक बता दो, एक बात ऐसी मुझे बहुत, मतलब अभी क्या अभी बनना है। क्या उत्तर देंगे शिवानंद भाई? ऐसे उत्तर से खुश होते हैं कि वो तो उनको ही पता है, उनको इंटरेस्ट उत्तर में नहीं है, प्रश्न में है। उत्तर तो वही है जो सुने हुए हैं, उत्तर तो क्या देंगे कोई ज्यादा से ज्यादा, कोई नया कुछ देगा क्या? वो तो हमको सब पता है, उत्तर देते ही सारा प्रश्न का जो मजा है किरकिरा हो जाता है। हमें तो कोई नया ऐसा कुछ चाहिए जो व्यक्ति जिसमें हम उत्तर पूछे, और उस उत्तर पूछने में हमारी भी थोड़ी बड़ाई हो, वाह वाह हो। प्रश्न पूछने में उत्तर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, उत्तर तो क्या दोगे तुम? बाप समान बनो, पुरुषार्थ करो, अमृत वेला करो, अध्ययन करो, चिंतन करो, यही उत्तर दोगे और क्या दोगे? उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है हमको। तो क्या करना है, ब्रह्मा बाप के समान नयन क्या अनुभव कराए, रूहानियत का। तो नयनों को रूहानी बनाना, नयनों में रूहानियत भरना। तो इन नयनों को देह और चमड़ी देखने की जो आदत है, इस आदत से उसे विमुख करना होगा। दूसरा क्या बताया, चलन से उसके चरित्र। तो अव्यक्त मास में बाबा के चरित्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहना है, क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तीसरा मस्तक क्या बताए, मस्तक मणि, यहां पर मणि दिखाई दे। और चौथा चरित्र, सूरत से क्या दिखाई दे, अलौकिक स्थिति, अलौकिक स्थिति। इसके लिए अपनी अंतर्मुखी अवस्था चाहिए, मौन की, अंतर्मुखता की, इसको बढ़ाते जाना है, उसके लिए टाइम चाहिए। अलौकिक व रूहानी स्थिति में सदाकाल रहने का अभ्यास करो, सदाकाल, सदा हमेशा रहने का अभ्यास करो। तो आज ये दो चीजें, एक तो शांति स्तंभ का अभिलेख जो था वो मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, और दूसरा बाप समान नैन मस्तक सूरत और चलन अपनी बनाना और अंतर्मुक्ता की धारणा को गहरी करते जाना। ओम शांति।